अध्ययन लेख 32। इस लेख का अध्ययन 2 से 8 अक्टूबर के दौरान किया जाएगा। विषय, यहोवा की तरह लिहाज करने वाले हों। ये लेख फिलिप्पियों 4:5 पर आधारित है, जहां लिखा है, सब लोग जान जाएं कि तुम लिहाज करने वाले इंसान हो। गीत 89, सुन के अमल करें। एक झलक। जब लिहाज करने और फेरबदल करने की बात आती है तो यहोवा और यीशु सबसे बढ़िया मिसाल हैं, और वो चाहते हैं कि हम भी उनकी तरह बने। जब हम फेरबदल करने के लिए तैयार रहते हैं तो हालात बदलने पर हम खुद को आसानी से ढाल पाते हैं। जैसे अगर हमारी सेहत खराब हो जाए या हमें पैसों की तंगी झेलनी पड़े तो उसका सामना करना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। और जब हम दूसरों का लिहाज करते हैं तो इससे मंडली में शांति और एकता बनी रहती है। पैराग्राफ 1। सवाल, मसीहियों को किस तरह एक पेड़ की तरह होना चाहिए? जो पेड़ झुक जाता है उसे तेज हवाएं भी गिरा नहीं पाती। इस अफ्रीकी कहावत से पता चलता है कि कुछ पेड़ इसलिए मजबूती से खड़े रह पाते हैं क्योंकि जरूरत पड़ने पर वो झुक जाते हैं। उसी तरह अगर एक मसीही खुशी से यहोवा की सेवा करते रहना चाहता है तो उसे झुकने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसका मतलब जब हमारे हालात बदल जाएं तो हमें फेरबदल करने के लिए तैयार रहना चाहिए, और जब दूसरों की सोच या उनके फैसले हमसे अलग हों तो हमें उनका लिहाज करना चाहिए। पैराग्राफ 1 से जुड़ी तस्वीर में 2 अलग अलग पेड़ दिखाए गए हैं। एक पेड़ तूफान के दौरान झुक गया था इसलिए वो अब भी खड़ा है, मगर दूसरा पेड़ सख्त था इसलिए वो टूटकर गिर गया है। चित्र शीर्षक, आप किस पेड़ की तरह होना चाहते हैं? पैराग्राफ 2। सवाल क, कौन से गुण बढ़ाने से हम बदलते हालात का सामना कर पाएंगे? सवाल ख, इस लेख में हम क्या जानेंगे? हम यहोवा के सेवक हैं, इसलिए हम भी चाहते हैं कि हम दूसरों का लिहाज करें और फेरबदल करने को तैयार रहें। हम नम्र भी होना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे दिल में दूसरों के लिए करुणा हो। इस लेख में हम जानेंगे कि ये गुण बढ़ाने से कैसे कुछ मसीही बदलते हालात का सामना कर पाए और इन्हें बढ़ाने से हमें कैसे फायदा हो सकता है। लेकिन आइए पहले यहोवा और यीशु से सीखें, जो लिहाज और फेरबदल करने के मामले में हमारे लिए सबसे बढ़िया मिसाल हैं। यहोवा और यीशु हैं एक बढ़िया मिसाल। पैराग्राफ 3। सवाल, किस बात से यह साबित होता है कि यहोवा लिहाज करने वाला परमेश्वर है और फेरबदल करने को तैयार रहता है? यहोवा के बारे में कहा गया है कि वो चट्टान है क्योंकि वो अटल रहता है, लेकिन वो लिहाज करने वाला परमेश्वर भी है और जरूरत पड़ने पर फेरबदल करने को भी तैयार रहता है। जैसे जैसे दुनिया के हालात बदलते हैं वो अपना मकसद पूरा करने के लिए फेरबदल करता है। यहोवा ने इंसानों को भी अपनी छवि में बनाया है, इसलिए हम में ऐसी काबिलियत है कि हम बदलते हालात में खुद को ढाल सकते हैं। उसने बाइबल में ऐसे सिद्धांत भी दिए हैं जिन्हें ध्यान में रखकर हम सही फैसले कर सकते हैं, फिर चाहे हमारे सामने कैसे भी हालात आएं। यहोवा की मिसाल से और उसने जो सिद्धांत दिए हैं उनसे साबित होता है कि वो चट्टान की तरह अटल है, साथ ही वो लिहाज करने और फेरबदल करने के लिए भी तैयार रहता है। पैराग्राफ 4। सवाल, एक उदाहरण देकर समझाइए कि यहोवा किस तरह लिहाज करने वाला परमेश्वर है। यहोवा जिस तरह इंसानों के साथ पेश आता है उससे भी पता चलता है कि वो लिहाज करने वाला परमेश्वर है। वो हमेशा वही करता है जो सही है। वो कभी लोगों के साथ कठोरता से पेश नहीं आता, बल्कि फेरबदल करने के लिए तैयार रहता है। उदाहरण के लिए ध्यान दीजिए कि यहोवा ने इसराइलियों का किस तरह लिहाज किया। उसने हमेशा ये उम्मीद नहीं की कि सभी इसराइली एक ही तरह का बलिदान चढ़ाएं, फिर चाहे वो गरीब हों या अमीर। कुछ मामलों में उसने हर किसी को अपनी हैसियत के हिसाब से बलिदान चढ़ाने की इजाजत दी। लेवी व्यवस्था 5:7 में लिखा है, लेकिन अगर अपने पाप के लिए मेमने की दोष बलि देने की उसकी हैसियत नहीं है तो उसे 2 फाकते या कबूतर के 2 बच्चे यहोवा के सामने लाने चाहिए, एक पाप बलि के लिए और दूसरा होम बलि के लिए। और आयत 11 में लिखा है, अगर उस आदमी के पास 2 फाकते या कबूतर के 2 बच्चे देने की भी हैसियत नहीं है तो उसे पाप बलि के लिए एपा का दसवां भाग मैदा लाना होगा। उसे मैदे में ना तो तेल मिलाना चाहिए और ना ही उसके ऊपर लुबान रखना चाहिए, क्योंकि यह पाप बलि है। पैराग्राफ 5। सवाल, हम क्यों कह सकते हैं कि यहोवा नम्र है और करुणा करने वाला परमेश्वर है? उदाहरण देकर समझाइए। यहोवा इसलिए लिहाज करता है और फेरबदल करने को तैयार रहता है क्योंकि वो नम्र है और उसके दिल में लोगों के लिए करुणा है। जरा एक उदाहरण पर ध्यान दीजिए, जिससे पता चलता है कि यहोवा कितना नम्र है। उसने फैसला कर लिया था कि वो सदोम के दुष्ट लोगों का नाश कर देगा। उसने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर अपने नेक सेवक लूत को हिदायत दी कि वो पहाड़ी प्रदेश में भाग जाएं। पर लूत वहां जाने से डर रहा था, इसलिए उसने परमेश्वर से गुजारिश की कि क्या वो और उसका परिवार पास के छोटे से नगर सोअर में जा सकते हैं। यहोवा सोअर का भी नाश करने वाला था, इसलिए वो लूत से कह सकता था कि उससे जो कहा गया है वो वैसा ही करे। लेकिन उसने लूत का लिहाज किया और उसकी गुजारिश मान ली, इस वजह से उसने सोअर को बख्श दिया। सदियों बाद यहोवा ने नीनवे के लोगों पर करुणा की। कैसे? उसने भविष्यवक्ता योना को वहां ये ऐलान करने के लिए भेजा था कि वो जल्द ही उस शहर और वहां के सभी दुष्ट लोगों का नाश करने वाला है। लेकिन फिर नीनवे के लोगों ने पश्चाताप किया, इसलिए यहोवा को उन पर तरस आया और उसने उनका और उनके शहर का नाश नहीं किया। पैराग्राफ 6। सवाल, उदाहरण देकर समझाइए कि यीशु ने कैसे यहोवा की तरह दूसरों का लिहाज किया। यहोवा की तरह यीशु भी लोगों का लिहाज करता है। उसे धरती पर इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को प्रचार करने के लिए भेजा गया था, लेकिन यह जिम्मेदारी निभाते वक्त वो लकीर का फकीर नहीं बना रहा। एक मौके पर एक गैर इसराइली औरत ने उससे गिड़गिड़ाकर विनती की कि वो उसकी बेटी को ठीक कर दे, जिसे एक दुष्ट स्वर्गदूत ने बुरी तरह काबू में कर लिया था। यीशु के दिल में उस औरत के लिए करुणा भर आई और उसने उसकी बेटी को ठीक कर दिया। एक और उदाहरण पर ध्यान दीजिए। धरती पर सेवा करते वक्त एक बार यीशु ने कहा था, जो कोई मेरा इनकार करता है मैं भी उसका इनकार कर दूंगा। मत्ती 10:33। लेकिन जब पतरस ने उसे जानने से 3 बार इनकार कर दिया, तब यीशु ने क्या किया? यीशु जानता था कि पतरस को अपने किए पर सच्चा पछतावा है और वो एक विश्वास योग्य सेवक है, इसलिए उसने पतरस को ठुकरा नहीं दिया। जिंदा होने के बाद वो पतरस से मिला और उसने जरूर उसे यकीन दिलाया होगा कि उसने उसे माफ कर दिया है और वो अब भी उससे प्यार करता है। पैराग्राफ 7। सवाल, जैसे फिलिपियों 4:5 में बढ़ावा दिया गया है, हम कैसा नाम कमाना चाहते हैं? अब तक हमने देखा कि यहोवा और यीशु लिहाज करने वाले शख्स हैं, और यहोवा चाहता है कि हम भी लिहाज करने वाले हों। फिलिपियों 4:5 में लिखा है, सब लोग जान जाएं कि तुम लिहाज करने वाले इंसान हो, प्रभु पास है। इस आयत का एक बाइबल में इस तरह अनुवाद किया गया है, लिहाज करने वाले इंसान के तौर पर तुम्हारा नाम हो। तो हम खुद से पूछ सकते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? क्या मैं लिहाज करने वाला इंसान हूं? क्या मैं झुकने या फेरबदल करने के लिए तैयार रहता हूं? क्या वो मुझे कठोर या अड़ियल समझते हैं? क्या मैं ये सोचता हूं कि मेरी बात पत्थर की लकीर है और सबको मेरी सुननी चाहिए? या मैं दूसरों की सुनने के लिए तैयार रहता हूं और जब मुनासिब होता है तो उनकी बात मान लेता हूं? जितना हम दूसरों का लिहाज करते हैं या फेरबदल करने को तैयार रहते हैं, उतना ही हम यहोवा और यीशु की तरह बन रहे होते हैं। अब आइए ऐसे 2 मामलों पर गौर करें जहां हमें फेरबदल करने को तैयार रहना चाहिए। पहला, जब हमारे हालात बदल जाएं, और दूसरा, जब लोगों की सोच और उनके फैसले हमसे अलग हों। हालात बदलने पर फेरबदल करने के लिए तैयार रहें। पैराग्राफ 8। सवाल, क्या करने से हम बदलते हालात के मुताबिक खुद को ढाल पाएंगे? फेरबदल करना हमारे लिए तब जरूरी हो जाता है जब हमारे हालात बदल जाते हैं। कुछ बदलावों की वजह से हमारे सामने ऐसी मुश्किलें आ सकती हैं जिनके बारे में शायद हमने सोचा भी ना हो। हो सकता है अचानक हमारी सेहत खराब हो जाए, या आर्थिक या राजनीतिक बदलाव की वजह से शायद रातों रात हमारी जिंदगी उलट पुलट हो जाए। ये भी हो सकता है कि यहोवा के संगठन में हमें जो जिम्मेदारी या काम दिया गया है उसमें कोई बदलाव हो। हमारे सामने चाहे जैसे भी हालात हों, अगर हम आगे बताए चार कदम उठाएं तो हमारे लिए नए हालात में खुद को ढालना आसान हो जाएगा। पहला, ये मान लीजिए कि हालात बदल गए हैं। दूसरा, आगे की ओर देखिए। तीसरा, अच्छी बातों पर मन लगाइए। और चौथा, दूसरों के लिए कुछ कीजिए। अब आइए ऐसे कुछ भाई बहनों के उदाहरणों पर गौर करें जिन्हें ये कदम उठाने से काफी मदद मिली। पैराग्राफ 9, सवाल, जब एक मिशनरी पति पत्नी के हालात अचानक बदल गए तो उन्होंने कैसे उनका सामना किया? ये मान लीजिए कि हालात बदल गए हैं। भाई इमानवेला और उनकी पत्नी फ्रेंचेस्का को एक दूसरे देश में मिशनरी के तौर पर सेवा करने के लिए कहा गया। उन्होंने वहां की भाषा सीखनी बस शुरू ही की थी और वो मंडली के भाई बहनों को अभी जानने की कोशिश ही कर रहे थे कि कोविड-19 महामारी शुरू हो गई। अब वो वहां किसी भाई बहन से नहीं मिल सकते थे। फिर अचानक बहन फ्रेंचेस्का की मां की मौत हो गई। बहन का बहुत मन कर रहा था कि वो अपने परिवार के साथ हों, लेकिन महामारी की वजह से वो उनके पास नहीं जा पाई। बहन इस मुश्किल हालात का सामना कैसे कर पाई? पहली बात, भाई इमानवेला और बहन फ्रेंचेस्का हर दिन यहोवा से बुद्धि के लिए प्रार्थना करते थे कि वो किसी तरह आज का दिन काट पाए। यहोवा ने उनकी प्रार्थनाएं सुनी और संगठन के जरिए सही समय पर उनकी मदद की। उदाहरण के लिए, एक वीडियो में एक भाई ने जो बात कही थी उससे उन्हें बहुत हिम्मत मिली। उस भाई ने कहा था, नए हालात में हम खुद को जितनी जल्दी ढालेंगे उतनी ही जल्दी हमारी खुशी लौट आएगी और इस नए हालात में हम अच्छे से यहोवा की सेवा कर पाएंगे। दूसरी बात, उन्होंने सोचा कि वो फोन पर गवाही देने का हुनर बढ़ाएंगे और जब उन्होंने ऐसा किया तो वो एक बाइबल अध्ययन भी शुरू कर पाए। तीसरी बात, उनकी मंडली के भाई बहनों ने जब उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश की और उनकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाया तो उन्होंने खुशी खुशी उसे कबूल किया और उनका एहसान माना। जैसे एक बहन हर दिन उन्हें एक मैसेज भेजती थी जिसमें वो बाइबल की एक आयत भी लिखती थी और ऐसा वो एक साल तक करती रहीं। अगर हम भी ये मान लें कि हमारे हालात बदल गए हैं तो हम अपने नए हालात में खुद को ढाल पाएंगे और हमसे जो हो सकेगा उससे खुशी पाएंगे। पैराग्राफ 10, सवाल, हालात बदलने पर एक बहन ने क्या फेरबदल किए? आगे की ओर देखिए और अच्छी बातों पर मन लगाइए। रोमानिया की एक बहन क्रिस्टीना जापान में सेवा करती हैं। पहले वो वहां एक अंग्रेजी मंडली में थी, फिर बाद में वो मंडली बंद कर दी गई। इससे बहन को थोड़ा दुख तो हुआ पर वो उसी बारे में सोचती नहीं रही। इसके बजाय उन्होंने तय किया कि वो जापानी भाषा वाली मंडली में जाएंगी और उस भाषा में अच्छी तरह प्रचार करने की पूरी कोशिश करेंगी। बहन जापानी भाषा अच्छी तरह सीखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने एक औरत से मदद मांगी जो पहले उनके साथ काम करती थी। उन्होंने उस औरत से ये भी पूछा कि क्या वो बाइबल और खुशी से जिए हमेशा के लिए ब्रोशर से उन्हें जापानी भाषा सिखा सकती है। वो औरत राजी हो गई। इससे ना सिर्फ बहन क्रिस्टीना अच्छी तरह जापानी भाषा बोलने लगी बल्कि वो औरत भी बाइबल के संदेश में दिलचस्पी लेने लगी। इस अनुभव से हम क्या सीखते हैं? यही कि अगर हम आगे की ओर देखें और अच्छी बातों पर मन लगाएं तो अचानक हालात बदलने पर भी हमें ऐसी आशीषें मिल सकती हैं जिनके बारे में शायद हमने सोचा भी ना हो। पैराग्राफ 11, सवाल, जब एक पति पत्नी को पैसों की तंगी हुई तो उन्होंने उसका सामना कैसे किया? दूसरों के लिए कुछ कीजिए। एक पति पत्नी एक ऐसे देश में रहते हैं जहां हमारे काम पर रोक लगी है। जब वो देश दिवालिया हो गया तो उन्हें पैसों की तंगी झेलनी पड़ी। इस बदलते हालात में उन्होंने खुद को कैसे ढाला? सबसे पहले उन्होंने अपने खर्चे कम करने की कोशिश की। फिर उन्होंने तय किया कि वो अपनी समस्याओं के बारे में बहुत ज्यादा सोचने के बजाय प्रचार काम पर ज्यादा ध्यान देंगे और इस तरह दूसरों की मदद करेंगे। भाई कहते हैं, प्रचार काम में लगे रहने की वजह से अपनी समस्याओं के बारे में सोचने का हमारे पास वक्त ही नहीं बचता था। हम परमेश्वर की मर्जी पूरी करने पर ज्यादा ध्यान देते थे। जब हमारे हालात बदल जाते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि दूसरों की मदद करते रहना बहुत जरूरी है, खासकर प्रचार काम करके। पैराग्राफ 12। सवाल, प्रचार में फेरबदल करने के मामले में हम प्रेषित पॉलुस से क्या सीख सकते हैं? हमें प्रचार में भी फेरबदल करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम जिन लोगों को प्रचार करते हैं वो अलग अलग माहौल में पले बड़े होते हैं, उनके तौर तरीके और रहन सहन अलग अलग होता है, और ईश्वर को मानने की बात आती है तो सबका अपना अपना विश्वास होता है। लोगों के हालात को ध्यान में रखकर उनसे बात करने के मामले में पौलुस एक अच्छी मिसाल है। पौलुस को यीशु मसीह ने गैर यहूदी राष्ट्रों के लिए प्रेषित चुना था, रोमियो 11:13, पर उसने यहूदियों, यूनानियों, पढ़े लिखे लोगों, गांव वालों, बड़े बड़े अधिकारियों और राजाओं सबको प्रचार किया। इतने अलग अलग तरह के लोगों के दिलों में सच्चाई का बीज बोने के लिए पौलुस सब किस्म के लोगों के लिए सब कुछ बना। 1 कुरिन्थियों 9:22। वो इस बात पर ध्यान देता था कि वो जिन लोगों को प्रचार कर रहा है वो किस संस्कृति से हैं, किस माहौल में पले बड़े हैं और वो क्या मानते हैं। फिर उसके हिसाब से वो प्रचार करने के तरीके में फेरबदल करता था। उसी तरह अगर हम ये सोचें कि हमें अलग अलग लोगों से किस तरह बात करनी चाहिए और फिर उस हिसाब से अपने प्रचार करने के तरीके में फेरबदल करें, तो हम उन्हें अच्छी तरह गवाही दे पाएंगे। दूसरों के फैसलों का आदर कीजिए। पैराग्राफ 13। सवाल, अगर हम दूसरों की सोच और उनके फैसलों का आदर करें तो 1 कुरिन्थियों 8:9 के मुताबिक हम क्या करने से बच सकते हैं? दूसरों का लिहाज करने से हम उनकी सोच और फैसलों का भी आदर करेंगे। उदाहरण के लिए, कुछ बहनों को मेकअप करना अच्छा लगता है पर कुछ को नहीं। कुछ मसीह एक हद में रहकर शराब पीते हैं पर कुछ इसे छूते तक नहीं। और हम सब चाहते हैं कि हमारी सेहत अच्छी रहे, लेकिन जब इलाज के तरीकों की बात आती है तो हर मसीह की सोच अलग अलग होती है। अगर हम ये सोचें कि हम जो मानते हैं वही सही है और अपनी राय मंडली में दूसरों पर थोपने की कोशिश करें, तो इससे लोगों को ठोकर लग सकती है और मंडली में फूट पड़ सकती है। हम ऐसा कभी नहीं करना चाहेंगे। 1 कुरिन्थियों 8:9 में लिखा है, मगर हमेशा ध्यान रखना कि तुम्हारे पास अपना चुनाव करने का जो हक है उसका ऐसे इस्तेमाल ना करो कि तुम कमजोर लोगों के लिए विश्वास से गिरने की वजह बनो। अब आइए 2 उदाहरणों पर ध्यान दें। इनसे हम समझ पाएंगे कि बाइबल के सिद्धांत ध्यान में रखने से हम कैसे अच्छे फैसले कर सकते हैं और शांति बनाए रख सकते हैं। पैराग्राफ 13 से जुड़ी तस्वीर में दिखाया गया है कि जो पेड़ लचीला था वो एक तूफान के दौरान झुका हुआ है। वहीं एक छोटी तस्वीर में दिखाया गया है कि एक भाई के हाथ में बियर का ग्लास है और दूसरा भाई उसे हैरानी से देख रहा है। चित्र शीर्षक, अगर हम लिहाज करने वाले इंसान हैं तो हम दूसरों की सोच और उनके फैसलों का आदर करेंगे। पैराग्राफ 14। सवाल, पहनावा और बनाव सिंगार के मामले में फैसले करते वक्त हमें बाइबल के कौन से सिद्धांत ध्यान में रखने चाहिए? पहनावा और बनाव सिंगार, हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, इस बारे में यहोवा ने बहुत सारे नियम नहीं बनाए बल्कि उसने कुछ सिद्धांत दिए हैं जिन्हें ध्यान में रखकर हम सही फैसले कर सकते हैं। इस मामले में कोई फैसला करते वक्त हमें समझदारी से काम लेना चाहिए, दूसरों का लिहाज करना चाहिए और ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो सलीकेदार हों और परमेश्वर के सेवकों को शोभा देते हों। इसलिए हम ऐसे कपड़े नहीं पहनते जिनसे बेवजह लोगों का ध्यान हम पर जाए। यहोवा ने बाइबल में हमारे लिए सिद्धांत लिखवाए हैं, इस वजह से प्राचीन ध्यान रखते हैं कि वो कपड़ों और बाल बनाने के मामले में अपनी तरफ से कोई नियम ना बनाए। ध्यान दीजिए कि एक मंडली में प्राचीनों ने क्या किया। उस मंडली के कुछ नौजवान भाइयों ने बालों का ऐसा स्टाइल अपना लिया था जो उस समय बहुत चलन में था। उनके बाल छोटे तो थे पर बहुत बेढंगे दिखते थे। प्राचीनों ने कोई नियम बनाए बिना कैसे उन नौजवानों की मदद की? उनके सर्किट निगरान ने उन्हें सलाह दी कि वो उन नौजवानों से कुछ ऐसा कह सकते हैं। मान लीजिए आप स्टेज से कोई भाग पेश कर रहे हैं, लेकिन आप जो बता रहे हैं उस पर ध्यान देने के बजाय भाई बहन इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि आप कैसे दिख रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ तो दिक्कत है। इस तरह आसानी से समस्या भी सुलझ गई और भाइयों को कोई नियम भी नहीं बनाना पड़ा। पैराग्राफ 14 से जुड़ी तस्वीर में दिखाया गया है कि जो पेड़ लचीला था वो एक तूफान के दौरान झुका हुआ है। वहीं एक छोटी तस्वीर में दिखाया गया है कि अलग अलग देश और जाति के भाई बहन एक अधिवेशन में साथ में फोटो खिंचवा रहे हैं। सबने अलग अलग तरह के पर सलीकेदार कपड़े पहने हुए हैं, जैसा मसीहों को शोभा देता है। चित्र शीर्षक। अगर हम लिहाज करने वाले इंसान हैं तो हम दूसरों की सोच और उनके फैसलों का आदर करेंगे। पैराग्राफ 15। सवाल, बाइबल में दिए कौन से नियम और सिद्धांत ध्यान में रखकर हम सेहत और इलाज से जुड़े फैसले ले सकते हैं? सेहत और इलाज। हर मसीह को खुद फैसला करना चाहिए कि वह अपनी सेहत का किस तरह ख्याल रखेगा। इलाज के मामले में जब फैसले करने की बात आती है तो इस बारे में बाइबल में कुछ ही नियम दिए गए हैं, जैसे हमें खून से और जादू टोने से दूर रहना है। इसके अलावा हर मसीह को खुद तय करना है कि वो किस तरह का इलाज करवाएगा। कुछ लोगों को डॉक्टरों से इलाज करवाना सही लगता है, वही दूसरों को कुछ अलग तरह से इलाज करवाना सही लगता है। इलाज का कोई तरीका हमें कितना ही सही या गलत क्यों ना लगता हो, हमें अपनी राय दूसरों पर नहीं थोपनी चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस मामले में हर भाई बहन को खुद फैसला करने का हक है। तो हम सभी को आगे बताई बातें ध्यान में रखनी चाहिए। 1, परमेश्वर के राज में ही हर तरह की बीमारी दूर होगी और हम पूरी तरह सेहतमंद रह पाएंगे। 2, हर मसीह को पूरा यकीन होना चाहिए कि उसके लिए किस तरह का इलाज करवाना सही है। रोमियो 14:5 में लिखा है, कोई आदमी एक दिन को दूसरे दिन से बड़ा मानता है तो दूसरा सभी दिनों को एक बराबर मानता है। हर एक इंसान वही करे जिसके बारे में उसे पूरा यकीन है। 3, हम दूसरों के फैसलों पर उंगली नहीं उठाते और ऐसा कुछ नहीं करते जिससे उन्हें ठोकर लगे। और 4, हम भाई बहनों से प्यार करते हैं और ध्यान रखते हैं कि हमारी पसंद नापसंद से ज्यादा मंडली की एकता मायने रखती है। अगर हम इन बातों को ध्यान में रखें तो भाई बहनों के साथ हमारा रिश्ता अच्छा होगा और मंडली में शांति बनी रहेगी। पैराग्राफ 15 से जुड़ी तस्वीर में दिखाया गया है कि जो पेड़ लचीला था वो एक तूफान के दौरान झुका हुआ है। वहीं एक छोटी तस्वीर में दो लोगों के हाथ दिखाए गए हैं। एक हाथ में अंग्रेजी दवाइयां हैं और दूसरे हाथ में होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवाइयां। चित्र शीर्षक। अगर हम लिहाज करने वाले इंसान हैं तो हम दूसरों की सोच और उनके फैसलों का आदर करेंगे। पैराग्राफ 16। सवाल, एक प्राचीन कैसे दूसरे प्राचीनों का लिहाज कर सकता है? दूसरों का लिहाज करने के मामले में प्राचीनों को एक अच्छी मिसाल रखनी चाहिए। जैसे एक प्राचीन को यह नहीं सोचना चाहिए कि वो बाकी प्राचीनों से उम्र में बड़ा है या उससे ज्यादा तजुर्बा है, इसलिए उन्हें हमेशा उसकी बात माननी चाहिए। उसे याद रखना चाहिए कि यहोवा की पवित्र शक्ति निकाय के किसी भी प्राचीन को ऐसी बात कहने के लिए उभार सकती है जिससे सही फैसला लिया जा सके। और अगर ज्यादातर प्राचीन किसी एक बात से सहमत हैं और वो बात बाइबल सिद्धांतों के खिलाफ नहीं है तो बाकी प्राचीन उनका लिहाज करते हैं और खुशी खुशी उनका साथ देते हैं, फिर चाहे उस मामले में उनकी अलग ही राय हो। पैराग्राफ 16 से जुड़ी तस्वीर में दिखाया गया है कि जो पेड़ लचीला था वो एक तूफान के दौरान झुका हुआ है। वहीं एक छोटी तस्वीर में दिखाया गया है कि प्राचीनों की सभा हो रही है। एक जवान प्राचीन कुछ कह रहा है और बाकी उसकी सुन रहे हैं। चित्र शीर्षक। अगर हम लिहाज करने वाले इंसान हैं तो हम दूसरों की सोच और उनके फैसलों का आदर करेंगे। लिहाज करने वाले बने और पाए ढेरों आशीषें। पैराग्राफ 17। सवाल, अगर हम लिहाज करने वाले इंसान हो और फेरबदल करने को तैयार रहें तो हमें कौन सी आशीषें मिलेंगी? जब हम लिहाज करने वाले इंसान होते हैं और फेरबदल करने के लिए तैयार रहते हैं तो हमें बहुत सी आशीषें मिलती हैं। भाई बहनों के साथ हमारा रिश्ता और भी अच्छा हो जाता है और मंडली में शांति बनी रहती है। हमें अलग अलग भाई बहनों के साथ मिलकर सेवा करने का मौका मिलता है। हम सबका स्वभाव अलग है, हम सब अलग अलग संस्कृति से हैं, फिर भी हम एक होकर यहोवा की सेवा कर पाते हैं, जिससे हमें बहुत खुशी मिलती है। और सबसे बढ़कर हमें ये जानकर खुशी होती है कि हम लिहाज करने वाले परमेश्वर यहोवा की तरह बन रहे हैं? आपका जवाब क्या होगा? लिहाज करने और फेरबदल करने के मामले में हम यहोवा और यीशु से क्या सीख सकते हैं? अगर हालात बदलने पर हम बदलाव करने को तैयार रहें तो इससे कौन से फायदे होंगे? अगर हम लिहाज करने वाले इंसान हो तो इससे मंडली में कैसे शांति बनी रहेगी? गीत 90, एक दूजे की हिम्मत बंधाएं। लेख समाप्त।